همه در خوابه، این مرگ اندیشم بی سایه و مهتابم، بی سایه و مهتابم. شدن باید تا آج پریدن ها هر جا که چرا شما با شعله خورشیدی سر تا سر شب را سوخت، چند در این پیله در تار تنیدن ها پروانه شدن باید، شدن باید تا آج پریدن ها.
मैं जानता था, बखुदा मैं जानता था मेरे मौला की इसमें कोई ना कोई मसलहत पोशीदा है।
गोया जैसे इमाम खुद हमारे नज़दीक हों और जानते हों कि खतरा हमारे पीछे है, और खतरे को टालने के लिए पहला खत भेजा, और जब खतरा टल गया तो फिर दूसरे खत के जरिए मुझ पर बंदा नवाजी फरमाई। मेरा दिल कुर्बान हो मेरे मौला पर, मेरी हजार जाने निसार हों।
इमाम इतने दूर से कैसे जानते थे कि आप खतरे में हैं?
इमाम का इल्म हम लोगों की सोचों से कहीं बढ़कर है।
खुदा का शुक्र कि खतरा टल गया, लेकिन जुराले यकीन करो इस दफा कूफे में मेरे पास कोई जगह नहीं जहां तुम्हें छुपा सकूं।
हाँ, एक बार फिर मुझे हिजरत करनी पड़ेगी। शायद बेहतर है कि मैं भी मदीना चला जाऊं, क्योंकि मैंने जो हदीसें नकल की हैं उनमें से कुछ के बारे में मुझे कुछ शक है, लिहाजा जरूरी है कि मौला के पास हाजिर हूँ और उन हदीसों की सेहत के बारे में मुझे इल्म हो, और हदीस के सही और ज़ईफ होने का पता कैसे लगाऊं।
कितना अच्छा है कि एक बार फिर हम सब एक साथ मौला की खिदमत में हाजिर होंगे।
खुदा का शुक्र मदीने जा रहे हैं, तो बेहतर है कि हम लोग मुख्तलिफ रास्तों से मदीने जाएं।
हाँ, इस तरह कुछ खतरा कम हो ही जाएगा।
इंशाल्लाह अब हम मदीने में मिलेंगे।
इंशाल्लाह, इंशाल्लाह
मदीने में इमाम की खिदमत में।
इंशाल्लाह मोमिन,
खुदा हाफिज़,
फिर मिलेंगे।
शुक्रिया बेटा, तुमने हमारी बहुत मदद की है।
मैंने तो कुछ नहीं किया है।
क्यों नहीं बेटा, तुमने तो अहम काम किया है। शुक्रिया,
फिर मिलेंगे।
जाबिर, आपका कब तक चलने का इरादा है?
Thank you.
इंतजार कर रहे हो?
इस बियाबा में मुझे किसका इंतजार हो सकता है भला?
मुझे क्या पता, शायद राहजनों का।
तुम मुतमईन रहो, इस कारवान में राहजनों के लायक कोई चीज नहीं है।
सरारा भी मदीना जा रहा है, वो तो कह रहे थे कि वो खाइन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस शासन ने इस बहाने से उसकी जान बचाई हो? अफसोस तुम्हारे हाल पर जुबैर, अगर तुमने मुझे धोखा दिया हो।
मालिक, आप सलामत रहें। जैसा आपने सोचा था वैसा ही हुआ है, और जैसा आपने चाहा था बिल्कुल ऐसा ही हुआ है।
बताओ भी, कौन सी ताज़ा खबर लाए हो?
मालिक, मैंने अपनी तमाम उम्र में इतनी अच्छी खबर अभी तक नहीं सुनाई है।
सच कह रहे हो? अच्छा, तो फिर जल्दी बको, क्या खबर है?
जाबिर इब्ने हयान बिलाखिर वो गिरफ्तार हो गया है। मालिक, है ना अच्छी खबर?
तुम्हें यकीन है वो गिरफ्तार हो गया है?
जुबैर और आमिर उस जाबिर भगोड़े के हाथ पांव बांध कर यहाँ लाए हैं।
दिल कितना उदास था उन लोगों के बगैर, उनसे कहो कि जल्द अज जल्द यहाँ आए।
सलाम उद्रूत हो बुजुर्ग हाकिम बसरा पर।
तुमने सुन लिया जाबिर इब्ने हयान, अगर तुम परिंदा बन के भी आसमान पर परवाज कर जाते तो हमारे अकाबों के पंजों से नहीं बच सकते थे। शाबाश सुबैर, शाबाश आमिर, हमारी तरफ से तुम लोगों के लिए बहुत सा इनाम है। काजी उल कजात।
जी मालिक।
अपने अधूरे नामुकम्मल काम को पूरा करो, अपने हुक्म को सादिर करो।
जो हुक्म मेरे मालिक। तुम शोबदाबाजी और जादूगरी और इनकार खुदावंद तबारक व ताला के वजूद के जुर्म में शरह मुकद्दस के हुक्म के मुताबिक वाजिबुल कत्ल हो। तुम गुनहगार शरह मुकद्दस हो, तुम्हारी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है, इसकी गर्दन उड़ा दो।
मैं
तुम अभी तक जाग रहे हो?
हाँ, ताकि कहीं आग बुझ ना जाए।
मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें दूसरों की फिक्र होगी।
अगर ऐसा होता तो मैं अब तक तुम्हारे साथ ना होता।
तुम सच कह रहे हो, तुम्हारी जगह तो यह नहीं। तुम न जाने यहाँ क्यों रुके हुए हो, खुदा बेहतर जानता है। शायद हमारी फिक्र में, या फिर शायद मुनासिब मौके की तलाश में, ताकि
लानत हो मुझ पर कि मैंने तुम्हारी खातिर खुद को इस मुश्किल में फंसाया है।
कौन सी मुश्किल?
यही के एक आवारा कुत्ते की तरह बयाबानों में भटक रहा हूँ, और यूं समझ लो कि बिला वजह इस हकीम की नौकरी कर रहा हूँ कि कहीं खलीफा के आदमियों के हाथ न लग जाए। सुन रही हो? काश के मैं
ज्यादा देर नहीं हुई है, तुम पलट सकते हो और दोबारा अपनी राजधानी शुरू कर दो। और अब तो तुम तन्हा बादशाह होगे बयाबानों के।
तुम्हें क्या पता जुल्फा, तुम क्या जानो, ना वो राजनी और ना ये हमदर्दी सब कुछ मैं अपने लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे खातिर। सिर्फ फकत सिर्फ तुम्हारे लिए।
तुम वापस जा रहे हो?
अतराफ का चक्कर लगाने जा रहा हूं, कहीं हुकूमत के आदमी हमारी गफलत से फायदा ना उठा लें।
कस कर बांधो शोकी।
जी मालिक।
मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं हकीम।
पूछो।
अगर आप अपने मकसद को हासिल करना चाहते हो तो क्या करेंगे?
देखना पड़ेगा कि मकसद क्या है और कितना अहम है।
आप मुतमईन रहें, मकसद नेक है।
देखो जुबैर, मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा जवाब जानता हूं। देखो, अपने मकसद को पाने के लिए हर कुछ करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा मकसद नेक हो, लेकिन तुमने इस नेक मकसद को पाने के लिए जो रास्ता चुना हो वो गलत हो। तो मकसद का नेक होना गलत रास्ते को सही नहीं कर देगा, समझे?
समझना चाहता हूं पर समझा नहीं।
अच्छा, तुम्हारी नजर में गरीबों और फकीरों को बख्शिश अता कैसा काम है?
खूब है, ये नेक काम है, और मैंने खुद ऐसा कई बार किया है।
किस तरह?
खूब। जिन दिनों में राहजनी किया करता था, जो हासिल करता था उसमें से कुछ फकीरों और गरीबों में बांट दिया करता था।
तुम्हारी नजर में तुम्हारा ये काम खुदा की नजर में सवाब रखता है?
मुझे नहीं मालूम, मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि खुदावंद ताला हर नेक काम का अजर 10 गुना देता है।
तुमने सही सुना है।
बस तो मेरा ये काम ठीक था, यानी 10 गुना अजर के मुकाबले में सिर्फ 1 गुना रहसनी का।
پس پھر تو تم نے اب تک اپنی آخرت کے لیے بہت سا ذخیرہ کر لیا ہوگا ہے نا؟
پتہ نہیں شاید.
یہی تمہاری غلط فہمی ہے زبیر. جو مال تم نے غریبوں میں بانٹا وہ تمہارا نہ تھا بلکہ کسی دوسرے کا تھا. بس اس مال کو غریبوں میں بانٹنے سے تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا راہزنی کا جرم تمہارے حساب میں لکھا جائے گا. یہی وہ سوال ہے جو تم نے پوچھا. اور فقراء کی جو مدد تم نے غلط راستے سے کی ہے وہ خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں. جان لو زبیر, صحیح راستہ یہی ہے جو کہ خیر تک جاتا ہے. سمجھے؟
چلے جابر, چلتے ہیں.
چلے,
اگر تیار ہے تو سفر شروع کریں. مدینہ کے حالات کوفے سے بھی بدتر ہے. خلیفہ کے آدمی اپنی پوری کوشش کریں گے کہ مومنین اپنے مولا سے نہ مل سکے.
ہمیں جلد از جلد شہر پہنچنا چاہیے تاکہ ہم لوگ وہاں کارواں میں ٹھہر سکیں.
کاروان سرا کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو. ہم ابو بصیر کے گھر جائیں گے. اس کا گھر محفوظ جگہ ہے. اب باخدا ابو بصیر وہ انسان ہے کہ جو ہمیں امام سے ملانے میں ہماری مدد کر سکتا ہے.
شہر میں داخل ہونا اور وہاں رکنا ٹھیک نہیں. ہو سکتا ہے ہمارے شہر میں داخل ہونے کی خبر سپاہیوں کو مل جائے. بصرہ اور کوفہ کے حالات کو تو دیکھا ہے, تو مدینے کے حالات کے بارے میں اندازہ لگا سکتا ہوں. بہتر ہے کہ یہیں پر ٹھہریں.
کیا تم ایسا جانتے ہو کہ جس سے ہم بے خبر ہیں؟
نہیں, میں تو سارے وقت آپ لوگوں کے ساتھ رہا ہوں, تو کس چیز کی اطلاع رکھ سکتا ہوں بھلا.
میں بھی زبیر کا ہم خیال ہوں. میرے خیال میں اتنے جاسوسوں کی موجودگی میں شہر جانا ٹھیک نہیں. یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے کیونکہ یہ جگہ مدینہ سے نزدیک ہے.
وہ امام کے خادموں میں سے ہے اور شہر کے حالات دوسروں سے زیادہ بہتر جانتا ہے.
ہاں, وہ جانتا ہے کہ کس طرح لوگوں کی نظروں میں آئے بغیر امام سے ملا جا سکتا ہے.
ہارون, وہی مرد نا جو کہ امام کے حکم سے جلتے تندور میں کود گیا تھا.
जलते तंदूर में कूद गया था? उसने ऐसा क्यों किया?
ये एक लंबी कहानी है।
मैं जानना चाहता हूँ, ये कैसे मुमकिन है कि कोई अपनी मर्जी से जलते तंदूर में कूद जाए?
कुछ अर्सा पहले खुरासान के कुछ लोग इमाम से मुलाकात के लिए आए और आपसे दरख्वास्त की कि आप कयाम फरमाएं। इमाम ने फरमाया कि अगर मैं कयाम करूं तो मेरा साथ देंगे? उन्होंने जवाब दिया कि आप जो हुक्म देंगे इताअत करेंगे। तंदूर जल रहा था और खूब गर्म हो रहा था। इमाम ने इन्हें आजमाने के लिए कहा कि तुम में से कोई इस तंदूर में कूद सकता है? वो लोग इमाम की बात सुनकर हैरान रह गए कि हम तो आपका साथ देने को तैयार हैं, तो फिर आप हमें क्यों ऐसा हुक्म दे रहे हैं कि हम तंदूर में कूद जाएं? इस दौरान हारून मक्की कमरे में दाखिल हुए, हुक्म फरमाया तंदूर में कूद जाओ। वो फौरन तंदूर में कूद गए। इमाम ने खुरासानियों से फरमाया, इमाम ने फरमाया कि खुरासान में कितने ऐसे लोग हैं जो बिला हीलो हुज्जत मेरी इताअत करें। कोई एक है? कोई ऐसा? खुरासानियों ने कहा कि नहीं, कोई नहीं है।
फिर हारून मक्की का क्या हुआ? तंदूर में जल गए?
इमाम और खुरासानियों का मुजाकरा खत्म होने के बाद इमाम ने हारून मक्की को आवाज दी और वो जर्रा बराबर भी जले बगैर तंदूर से बाहर आ गए।
यानी उन्होंने तंदूर में कूदने से पहले कुछ भी नहीं पूछा?
उसका ईमान इमाम पर निहायत पुख्ता था, लिहाजा पूछने की जरूरत नहीं थी।
तुम क्या सोच रहे हो जुबैर?
मुझे यकीन नहीं आता कि कैसे एक इंसान किसी के हुक्म से जलते तंदूर में कूद जाए और मरने के लिए तैयार हो जाए।
यह रस्म आशिकी है। इश्क हकीकी न इनकार करता है और ना कोई सवाल, वो तो सिर्फ मुंतजर रहता है हुक्म अताअत का।
मैं जो कहता हूँ कि मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती हैं। जब इंसान किसी का आशिक बनता है तो उसको पाना चाहता है, ना कि अपनी जान उस पर कुर्बान कर दे।
लेकिन क्या यह तुम्हारा कहना नहीं कि तुम दुख्तरे उनवान की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हो?
हाँ, लेकिन हमेशा बात और अमल के दरमियान हजारों मील का फासला रहा है। नहीं पता कि अगर ऐसा मौका आए कि जुल्फा के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े तो मैं ऐसा करूंगा या नहीं।
बस फिर अभी तक तुम्हारा अपने इश्क पर ईमान नहीं जुबैर। अगर तुम इस पर ईमान रखते तो फिर उसके लिए जान की बाजी भी लगा देते।
खुदा का शुक्र है वो लोग आ गए।
उधर देखो मोमिन, वो हमीद है।
सलाम इमाम के दोस्तों पर, खुदा की रहमत हो।
सलाम सलाम,
खुदा कबूल करे,
खुदा कबूल करे,
आप पर भी सलाम हो।
शुक्रिया।
कल सुबह से अब तक बयाबानों में आपका इंतजार कर रहा हूँ कि कहीं आप शहर में दाखिल ना हो जाएं।
शहर के हालात खराब हैं क्या?
हाकिम के आदमी कुत्तों की तरह शहर की गलियों में घूम रहे हैं। हकीम का हुक्म है कि हमारे मौला का कोई दोस्त या चाहने वाला उनसे मिलने ना पाए। मदीना जिंदान खाना बन गया है। जो भी महल्ला बनी हाशिम की तरफ जाता है उससे पूछगछ करते हैं।
अब क्या करना चाहिए?
मेरे गरीब खाने में आ जाएं। बहुत आरामदेह जगह तो नहीं, लेकिन वहाँ आप बिल्कुल महफूज रहेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा।
ठीक है, अब चलते हैं।
चलें
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 चलें चलिए।
अगर आप इजाजत दें तो मैं शहर हो आऊं।
क्यों?
मैं शहर के हालात जानना चाहता हूं।
हमारे पास खाने का सामान कम है, कुछ लेते आना।
जरूर।
जानते हो ना कि?
जानता हूं कि जो चीज भी खरीदूं उसकी अच्छी कीमत अदा करूं, जानता हूं। खुदा हाफिज।
खुदा की हिफाजत में।
इस तरफ चले हकीम। यही घर है।
खोल क्यों नहीं रहे?
शायद घर में कोई नहीं है।
आपके ख्याल में कहां जा सकते हैं?
अबा वसी सफर पर गया हुआ है।
यहां ठहरना मुनासिब नहीं। चलें।
चलो चले।
तरबूज मीठा है भाई।
सलाम। मदीना के कारवासरा में मैं तुम्हारा मुंतजर था फवेज। सफर बखैर, मदीना में खुश आमदीद। बाकी सब कहाँ हैं? सुनो देखो मैं क्या कह रहा हूँ जुबैर, हम अपने मकसद के बहुत करीब पहुँच गए हैं। क्यों सब किए कराए को बर्बाद कर रहे हो?
मैं कारवान सरा आना चाहता था, तुम्हारे लिए एक नई खबर है मेरे पास।
मैं जानता था कि मुझसे मोहलत मांगने का मतलब क्या है। तुम उससे कहीं ज्यादा चालाक हो कि जो तमाम चीजों को एक ही दफा हाथ से जाने दे।
अब अगर ऐसा है तो फिर सुनो, अब मुझे ना तुमसे और ना उस लालची हाथी में वसवसे से कोई सरोकार है। बस अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से।
मैं देख रहा हूँ कि तुम परेशान हो गए हो और शक में पड़ गए हो। काम के अंजाम के बारे में सोचो जुबैर।
میں وہ کام کروں گا کہ جو کہ صحیح ہو، کیونکہ اسی صورت میں اپنی منزل پا سکتا ہوں۔
بہت خوب، تو پھر ہم اپنی راہ پر چلتے ہیں۔
کون سی راہ؟ میں تو ابتدا سے ہی غلط راہ پر چلا ہوں۔
بس اس لڑکی کے عشق نے اپنا کام کر دکھایا اور تمہاری عقل پر پردے پڑ گئے ہیں۔
میں نے کہا تھا نا کہ پھر اس لڑکی کا نام اپنی گندی زبان پر نہ لانا۔
بہت اچھا، بہت خوب، تم درست کہہ رہے ہو، لیکن میں تمہارے باپ اور بھائی کی فکر میں ہوں۔
کان کھول کر سن لو، اب تم صرف اپنی فکر کرو، کیونکہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں بلکہ تمہارے مقابل کھڑا ہوں، اور آخری دم تک اپنے دوستوں کی حفاظت کروں گا۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ میں دوبارہ تمہیں نہ دیکھوں، سمجھے؟ اب کیا ہوا؟
بہت اچھا، بہت اچھا، بہت زیادہ ہوں، لیکن عثمان کے لیے بس یہ جاننا ہی بہت ہے کہ اس نے کس سانپ کو آستین پہ پھاڑا ہے، اور اگر اسے معلوم ہو گیا کہ میں اور تم ایک ہی تالی کے چتے بٹے ہیں اور تم جعفر ابن محمد کے دوستوں کی خبریں حاکم بصرہ کو دیتے تھے، تو جانتے ہو کیا ہوگا؟
جاؤ اپنا کام کرو، جاؤ۔
عجیب بات ہے عنوان، یہاں کے لوگ کتنا ایک دوسرے کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔
یعنی کیا؟ زیادہ راستہ نہیں ہے۔
کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟
میں ہوں عنوان، یہ جابر، جابر ابن حیان۔ ہم آئے ہیں کہ اپنے مولا جعفر ابن محمد سے ملاقات کریں۔
میرے مولا ان میں سے کسی نام کو نہیں جانتے۔
میں پہلے ہی جانتا تھا کہ جعفر ابن محمد ہماری مشکل کو حل نہیں کر سکتے، میں نے نہیں کہا تھا؟
جائیں یہاں سے،
ہم شہر سے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اور
کہا نا جناب، آپ جائیں یہاں سے، اب جائیں، مزاحم نہ ہوں،
میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔
میں نے کہا نا جناب، آپ جائیں یہاں سے، میں نے کہا نا جناب، آپ جائیں یہاں سے۔
معاف کیجیے گا، آپ لوگ ہماری مدد کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
ہمیں تمہاری مشکل سے کوئی سروکار نہیں، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ، اور اگر دوبارہ تمہارا سایہ بھی اس گلی میں نظر آیا تو جان لو کہ گرفتار کر لیے جاؤ گے۔ کیوں کھڑے ہو یہاں؟ جاؤ، تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ جاؤ، اب جاؤ یہاں سے۔
جا رہے ہیں،
نکالو ان کو یہاں سے۔
حکم،
یہاں آنا جانا بڑھ گیا ہے، پہلے سے زیادہ نگرانی
بہت بہتر ہے۔
وائے بر مدینہ، اس شہر کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے لوگوں کے سروں پر کیا مصیبت آ گئی ہے؟ کیا یہ وہی شہر پیغمبر نہیں ہے جس میں کچھ عرصہ پہلے میرے مولا جعفر ابن محمد مسجد کے ممبر پر درس دیا کرتے تھے اور لوگ جوگ در جوگ درس کے لیے شرکت کرتے تھے؟ اور اب بنی عباس نے امام پر زندگی اتنی تنگ کر دی ہے کہ اپنے دوستوں تک سے مل نہیں سکتے، کس سے شکایت کریں؟ خداوند، اے لوگوں، کیوں اپنے امام کو تنہا چھوڑ دیا ہے؟ کیا یہ شہر پیغمبر نہیں ہے؟ کیوں اپنے امام کو تنہا کر دیا ہے؟ تف ہے تم لوگوں پر، کیوں فرزند رسول خدا کے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟
Thank you.